लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो प्रज्ञा करता वह अपना हितकारी है, जो समझदार है वह फलेगा और फूलेगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता। दास का शासकों पर शासन करना और भी अशोभनीय है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया गया है। ज्ञान प्राप्त करना और उसका अनुसरण करना हमारी भलाई के लिए है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं अपितु सुख और शांति का भी वह स्रोत है। इसलिए केवल भौतिक वस्तुओं तक ज्ञान को सीमित न किया जाए, बल्कि इसके जरिए मन और आत्मा की शक्ति प्राप्त की जाए। अपनी आंतरिक शांति के लिए ज्ञान हासिल करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि हम ईश्वर से वरदान स्वरूप मिले अपने जीवन से प्रेम करते हैं। 19वें अध्याय के 9वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। श्रोताओं, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जानबूझकर गलत काम करने वाले को अपनी गलती के लिए दंड भोगना होगा, चाहे न्याय की अदालत हो या फिर दैनिक जीवन की कोई स्थिति। ईश्वर चाहते हैं कि हम सत्य का साथ दें, सत्य बोलें और झूठ को अपने जीवन में कभी भी कोई भी स्थान न दें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक भी कहता है कि झूठा दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। यह पद झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही देने वाले के प्रति ईश्वर के न्याय की निश्चितता को घोषित करता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। आगे 19वें अध्याय के 10वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता। दास का शासकों पर शासन करना और भी अशोभनीय है। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता, भाव यही कि कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वे प्रज्ञा का बहिष्कार कर देते हैं और इसी कारण भोग विलास के जीवन को सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि ऐसा करना उन्हें कतई शोभा नहीं देता। इसी प्रकार दास का शासकों पर शासन करना और भी अशोभनीय है। दास होते हुए शासक जैसा व्यवहार करना अपनी सच्चाई को झुठलाना है। इस तथ्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि इस पद की व्याख्या बाइबल आचार्यों ने अलग अलग ढंग से की है। कुछ एक ने इसे सुसमाचार के विपरीत बताया है, जिसमें जो बड़ा है उसे छोटा और जो छोटा है उसे बड़ा होना चाहिए। दूसरी ओर प्राचीन व्यवस्थान के प्रज्ञा ग्रंथ में निहित धर्मी और अधर्मी के विषय में भिन्न निर्णय का संदर्भ देकर वाल्दके कहते हैं, वह दास जो स्वभाव और प्रशिक्षण दोनों में अक्षम है चक्ति की भावना से मदहोश हो जाएगा और उसका शासन असहनीय निरंकुशता में विकसित हो जाएगा, जिससे कुप्रबंधन, सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक अराजकता को प्रश्रय मिलेगा। और 19वें अध्याय के 11वें पद में लेखक कहता है, समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। श्रोताओं, क्रोध मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इससे विवेक और समझदारी हमें बचा सकती है। यदि हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया गया है तो हम भी दूसरों को क्षमा क्यों न करें। प्रभु ईश्वर ने येसु ख्रीस्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा दिलाई, इसलिए हम भी एक दूसरे को क्षमा करें तथा दूसरों के अपराध क्षमा करने में अपना गौरव माने।
त्रिएक ईश्वर तो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिएक ईश्वर तो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो।
और अब आइए 19वें अध्याय के 12 से लेकर 14 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास थली पर ओस जैसी। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है और झगड़ालू पत्नी निरंतर चूने वाली नल जैसी है। घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। श्रोताओं, शेर की दहाड़ अपने आप में भयावह होती है, जो विनाश का एहसास दिलाती है। यही बात राजा या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के क्रोध के लिए सच है। यह यूदा के वंश के विरुद्ध ईश्वर के कोप के संबंध में भी सत्य है। प्रकाशना ग्रंथ के 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। श्रोताओं, जंगल के तानाशाह शेर की दहाड़ से अधिक भयानक और कुछ भी नहीं है, जिससे अन्य सभी जानवर कांप उठते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। इसी प्रकार जो राजा या शासक कानून से ऊपर होता है और बिना कानून के निरंकुश शासन करता है और जिसकी इच्छा ही उसका कानून है, वह सिंह के समान है। इसके विपरीत यदि वह उदार मना हो तो उसकी कृपा दृष्टि घास तली पर ओस जैसी होती है। ओस फिलिस्तीन की गर्म जलवायु में वनस्पति के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी और इसीलिए ओस को ईश्वर का एक वरदान निरूपित किया गया है। आगे, मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है। श्रोताओं, यह तो सच है कि किसी भी माता पिता के लिए मूर्ख पुत्र या पुत्री का होना दुखदायी होता है। यह दुख बर्बादी की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि दुख पिता के स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट कर देगा और कभी कभी पिता मूर्ख बेटे को बचाने के लिए खुद को भी बर्बाद कर लेता है। इसी तरह झगड़ालू पत्नी भी बर्बादी का रास्ता बनाती है। लेखक कहता है, झगड़ालू पत्नी निरंतर चूने वाले नल जैसी है। एक पिता के रूप में एक पुरुष की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की यह कहावत अब एक पति के रूप में एक पुरुष की संभावित समस्या को देखती है। जो पत्नी अपने पति से अक्सर झगड़ती और बहस करती है, वह कम से कम 3 तरह से निरंतर टपकती रहती है। सबसे पहले तो वह हमेशा मौजूद रहने वाली झुंझलाहट और परेशानी है। दूसरी बात, यह अच्छी और मूल्यवान चीजों को बर्बाद और नष्ट कर देती है। और तीसरी बात, पत्नी का झगड़ालू व्यवहार कुछ अंतर्निहित अथवा अधिक बुनियादी समस्या की ओर इशारा करता है। बाइबल आचार्य क्लार्क्स कहते हैं, जिस व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली है वह उस किराएदार के समान है जिसे खराब छत वाली झोपड़ी मिली है, जिसके हर हिस्से से या तो बारिश गिरती है या टपकती रहती है। वह इन मल के संपर्क में आए बिना न तो बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है, न काम कर सकता है और न ही सो सकता है। ईश्वर ही उस आदमी की मदद करें जो घर अथवा पत्नी के साथ ऐसी स्थिति में है। एक अरबी कहावत को दोहराते हुए डेलीट्स कहते हैं कि तीन चीजें एक घर को असहनीय बना देती हैं। टक, नक और बक। टक यानी कि बारिश का रिसाव, नक पत्नी का चिड़चिड़ापन और बक कीड़े। झगड़ालू पत्नी के विपरीत लेखक कहता है समझदार पत्नी है जो प्रभु का वरदान है। लेखक सचेत करता है कि घर और संपत्ति तो व्यक्ति को पूर्वजों की विरासत से मिल जाती है, किंतु समझदार पत्नी का मिलना मुश्किल होता है। इसलिए समझदार और प्रज्ञावान पत्नी ईश्वर की देन होती है। विवेकशील पत्नी विरासत से परे एक वरदान होती है।
त्रिएक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिएक ईश्वर दो है कृपालु, तेरी स्तुति हो आराधना हो। त्रिएक ईश्वर
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज से 70 साल पहले पोप फ्रांसिस की पुरोहिताई के लिए बुलाहट की कहानी शुरू हुई थी। यह 21 सितंबर 1953 का दिन था जब युवा जोज मारियो बेरगोलियो एक पार्टी से पहले पाप स्वीकार करने गए और कोरोना का यही अनुभव उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गया। पोप फ्रांसिस इनका बपतिस्मा नाम जोज मारियो बेरगोलियो है, लगभग 17 साल के थे। अर्जेंटीना में इस दिन को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और कलीसिया के लिए यह दिन संत मत्ती का पर्व दिवस है, जो एक पापी था जिसे यीशु ने प्रेरित बनने के लिए बुलाया। पोप ने स्वयं बतलाया कि उस विशेष दिन क्या हुआ था। उन्होंने कहा, पार्टी में जाने से पहले मैं उस पल्ली में रुका जहाँ मैं अक्सर जाता था। मुझे एक पुरोहित मिला जिससे मैं नहीं जानता था और मुझे पाप स्वीकार करने की इच्छा हुई। यह मेरे लिए एक मिलन का अनुभव था। मुझे लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मुझे याद नहीं है, मैं सचमुच नहीं जानता कि वहाँ वह पुरोहित क्यों था जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं था। मुझे पाप स्वीकार करने की इच्छा क्यों महसूस हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा था। वह काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। पाप स्वीकार के बाद मुझे लगा कि कुछ बदल गया है। मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने बुलाने के समान एक आवाज सुनी। मुझे यकीन हो गया कि मुझे पुरोहित बनना है। विश्वास में यह अनुभव महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि हमें ईश्वर को खोजना चाहिए, क्षमा मांगने के लिए उनके पास जाना चाहिए, लेकिन जब हम जाते हैं तो वे हमारा इंतजार करते हैं। स्पैनिश में एक शब्द है जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ईश्वर हमेशा पहले शुरू करते हैं, वे हमारी प्रतीक्षा करते हैं और यह वास्तव में एक महान अनुग्रह है, किसी ऐसे व्यक्ति को पाना जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आप पापी हैं, लेकिन वे आपको क्षमा देने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस की बुलाहट ईश्वर की करुणा के अनुभव से पैदा हुई है। संत पापा ने कहा, यीशु ने मत्ती को स्नेह से देखा और उसे अपने शिष्य के रूप में चुना। उन्होंने कहा, मैं मत्ती के समान महसूस करता हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, मुझे भी वैसा ही लगता है मत्ती की तरह। मत्ती का भाव मुझे प्रभावित करता है। ये थे संत पापा फ्रांसिस के शब्द। विश्व शांति दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया की वर्तमान स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए युद्ध को अंजाम देने वालों की निंदा की है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर यूक्रेन में, युद्ध की क्रूरता जब मानव जीवन को तबाह कर रही है, संत पापा ने पीड़ित लोगों की याद करते हुए शांति का आह्वान किया है। उन्होंने 21 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युद्ध से घायल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की आवाज एक प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक पहुंच रही है, जो पिता के हृदय को चीर रही है। हर युद्ध सिर्फ मृत्यु का रास्ता है, जिसके द्वारा कुछ लोगों को लगता है कि वे विजेता हैं। आज विश्व अल्जाइमर दिवस या भूलने की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए विश्व दिवस है। संत पापा फ्रांसिस ने अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित लोगों की याद करते हुए कहा, विश्व अल्जाइमर दिवस पर आइए हम एक साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, तथा उनके परिवार वालों और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं। पोप फ्रांसिस ने माननीय फादर लूर्दो आनंदम को तमिलनाडु के सिवा गंगा धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति की घोषणा 21 सितंबर को हुई। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लूर्दो आनंदम मदुराई महाधर्म प्रांत के पुरोहित हैं और वे इस समय पौत्र रोजरी पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष लूर्दो आनंदम का जन्म 15 अगस्त 1958 को सिवा गंगाधम प्रांत के तिरुवरंगम में हुआ था। मदुराई के अरुल आनंदर कॉलेज से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के संत पॉल सेमिनरी से ई शास्त्र की पढ़ाई की है। बाद में जर्मनी के फ्रैंकबर्ग स्थित अल्बर्ट लुद्विक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 6 अप्रैल 1986 को मदुराई महाधर्म प्रांत के लिए हुआ था। उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे मदुराई धर्म प्रांत के सचिव, पौत्र हृदय के पल्ली पुरोहित, सेक्रेट हार्ट सेमिनरी चेन्नई में ई शास्त्र के प्रोफेसर, तमिल कार्तिक साप्ताहिक के संपादक, मदुराई में सेंट पीटर सेमिनरी के रेक्टर और 2014 से अब तक वे पौत्र रोजरी पल्ली के पल्ली पुरोहित थे। रोम के लुम्सा विश्वविद्यालय में मंगलवार रात प्रस्तुत की गई एक नई पुस्तक में लोक धर्मियों, धर्म सामाजियों, आंदोलनों के संस्थापकों और बुद्धिजीवियों के 50 से अधिक साक्षात्कार शामिल हैं, जिन्होंने द्वितीय वैटिकन महासभा के मद्देनजर धर्म सभा पर विचार किया है। एक नई पुस्तक जिसमें संतों, पुरोहितों, लोक धर्मियों, आंदोलनों के संस्थापकों और बुद्धिजीवियों के 50 से अधिक साक्षात्कार हैं, वैटिकन द्वितीय महासभा से जुड़ी हैं और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि किस तरह सुसमाचार का प्रचार करें। पुस्तक को फादर वीटो मानियो ने संपादित किया है, जिसका शीर्षक है सिनोडल परिवर्तन, महासभा के बाद की कलीसिया के नायकों के साथ मुलाकातें। इससे इताली प्रकाशन सैन पाओलो संस्करण से प्रकाशित किया गया है। इसमें उन संवादों का चयन किया गया है जिन्हें रोगाशनिस्ट फादर वीटो मानियो ने पिछले 50 वर्षों में वैटिकन रेडियो पर प्रसारित किया है। यह पुस्तक मंगलवार को रोम के लुम्सा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की गई। विमोचन के दौरान फादर मानियो ने बतलाया कि साक्षात्कार का चयन करीब 200 से अधिक लोगों के साथ हुए साक्षात्कारों में से लिया गया है, जो प्रभु और कलीसिया के प्रति प्रेम से अत्यंत उत्साहित थे और जिनका योगदान महासभा का अनुपालन करते हुए पेत्रुस की नाव को नहीं डूबने दिया। वैटिकन संचार विभाग के संपादक के निदेशक अंद्रेया तोर्नेल्ली ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं था कि पहला साक्षात्कार महासभा के धर्माचार्य बिशप लुइजी बेतास्ती का है, जिनका निधन जुलाई 2023 को हुआ और जो द्वितीय महासभा से गहराई से जुड़े थे। बिशप बेतास्ती सिनट के धर्माध्यक्षों के महासचिव कार्डिनल मारियो क्रेच की याद करते हैं और बतलाते हैं कि द्वितीय वैटिकन महासभा समकालीन ख्रिस्ती धर्म की सबसे बड़ी नवीनता थी और इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इस अर्थ में कार्डिनल ने जोर दिया था कि सभी प्रतिवादियों ने सिनोडालिटी के माहौल में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, एक नवशास्त्रवाद में जो पोप फ्रांसिस के कारण विशेष मंडली से बाहर आया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।